अभिमन्यु अपने कमरे में आराम कर रहा था। पार्थ के अचानक घर पर आने पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पार्थ का सच भी जानना चाहता था। इस तमाशे के बीच आयशा का नाम भी निकल कर आया था। अभिमन्यु ने पृथ्वी को आयशा और पार्थ के बारे में पता लगाने को कहा था। कॉल कट होने से पहले पृथ्वी ने इशिका के बारे में कुछ बताया। इशिका का कोई राज था जो उसे पता चला था। अभिमन्यु ने कॉफी का घूंट लिया और फिर कुछ पल रुककर कहा, मुझे इशिका के बारे में सारे सच पता हैं। पृथ्वी वही डॉक्टर मर्चेंट है और डॉक्टर अनामिका के नाम पर जो मेडिसिन की रिसर्च होती है वो भी इशिका ही करती है। बचपन में मालविका ने उसे बेच दिया था। उसने मेरी वहां से निकलने में हेल्प की थी और यही वो लड़की है जिससे मैंने शादी का वादा किया था। मुझे नहीं लगता कि उसके इसके अलावा कोई और राज भी होंगे। आप गलत सोच रहे हैं सर, अभी उनकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज बाहर आना बाकी है, पृथ्वी ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, फिर बता दो कि मेरी वाइफ में और कौन से टैलेंट हैं। वैसे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि वो है ही इतनी खास, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। वो मन ही मन इशिका की एक नई आइडेंटिटी और उसके नए टैलेंट के बारे में जानने को तैयार था। अभिमन्यु अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था तभी पृथ्वी ने कहा, मुझे लगता है मिस सिंघानिया केशव सिंघानिया की बेटी है। जैसे ही पृथ्वी ने बताया, अभिमन्यु के गले में कॉफी अटक गई और वो खांसने लगा। अभिमन्यु के खांसने की आवाज़ सुनकर पृथ्वी ने जल्दी से पूछा, मिस्टर राजवंश आप ठीक है ना? इतना बड़ा झटका दे रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? अभिमन्यु ने हल्के घबराहट भरे भाव में कहा। उसने कॉफी का कप साइड में रखा और उसे पकड़कर बोला, देखो एक बार फिर से कन्फर्म कर लो, तुम यहाँ केशव सिंघानिया का नाम ले रहे हो। अगर गलती से भी उन्हें पता चला कि इशिका उनकी बेटी है तो हमारी शादी खतरे में आ सकती है। और वो कैसे? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। बहुत लंबी कहानी है, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा। वो कुछ पल रुककर आगे बोला, फिलहाल यही जान लो कि इशिका बिल्कुल केशव सिंघानिया की बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शादी खतरे में आ जाएगी। ये सच निकल भी जाए तो ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी ने जवाब दिया और फिर कॉल काट दिया। अभिमन्यु पृथ्वी के कॉल के बाद थोड़ा परेशान हो गया था। उसने सिर पकड़कर मन ही मन कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन इशिका मिस्टर सिंघानिया की बेटी नहीं होनी चाहिए। ओ माय गॉड, पूरी दुनिया छोड़कर उसका मिस्टर सिंघानिया की बेटी होना जरूरी था। जिस तरह से मिस्टर सिंघानिया मिसेस सिंघानिया को लेकर पजेसिव हो रहे थे, उससे एक बात तो साफ है कि मामला कुछ और है। अभिमन्यु का डर और घबराहट मिस्टर सिंघानिया को लेकर फिजूल नहीं था। वो उस दिन की याद में खो गया जब अभिमन्यु ने लंदन छोड़कर गोवा जाकर बिजनेस संभालने का डिसीजन लिया था। जाने से पहले अभिमन्यु केशव सिंघानिया के साथ डिनर के लिए बाहर गया हुआ था। अभिमन्यु का फैसला सुनकर केशव ने कहा, अचानक गोवा जाने का डिसीजन क्यों लिया? तुम जानते हो ना तुम्हारी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम्हारे वहां जाने के बाद तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। उन लोगों को इग्नोर करने के चक्कर में मैं अपनी पोजीशन को दांव पर नहीं लगा सकता। कंपनी का सीईओ मैं हूं, जबकि मेरे एब्सेंस में वहां सारा काम नकुल राजवंश देख रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो काफी गड़बड़ कर रहे हैं और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काकर मेरी पोजीशन लेना चाहते हैं। अगर शेयर होल्डर उनकी बातों में आ गए तो मेरा ही नुकसान है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उन सबको तो तुम यहां पर बैठकर भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है, केशव बोले। वो अभिमन्यु के गोवा जाने के फैसले से खुश नहीं थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और फिर मायूसी भरे स्वर में कहा, मेरे वहां जाने का कारण सिर्फ बिजनेस ही नहीं है। मेरी दादी के डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो लंदन नहीं आना चाहती हैं, तो बस मैं उनके आखिरी टाइम में उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके पास रहकर एक कोशिश करना चाहता हूँ। शायद मेरे साथ रहने से वो ठीक हो जाए। और तुम्हारी नकली शादी का क्या? वो लड़की बीमार रहती है जिसका तुम इलाज करवा रहे हो, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो ना? केशव ने भौहें उठाकर पूछा। केशव अभिमन्यु के मेंटोर थे, इस वजह से वो उसकी जिंदगी से जुड़े काफी राज जानते थे। उन्हें प्रणाली के बारे में कुछ पता नहीं था। ये बात पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैली थी कि अभिमन्यु शादीशुदा है, जबकि सच केशव अच्छे से जानते थे, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। वो मेरी बस एक दोस्त है, रही बात मेरी नकली शादी का तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि मेरी वाइफ की स्टडीज चल रही हैं, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाई। अच्छी बात है, लेकिन क्या उम्र भर अकेले रहने का इरादा है तुम्हारा? मेरे खुद की बेटी होती तो तुम्हें पूछता भी नहीं और सीधे तुम्हें किडनैप करके शादी कर देता। लेकिन अफसोस कि मैंने शादी नहीं की और ना ही हमारी खुद की फैमिली में कोई लड़की है। मैंने अपने दूर के रिश्तेदार की एक लड़की को अडॉप्ट करने का सोचा है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? केशव ने अभिमन्यु के सामने प्रस्ताव रखा। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर फिलहाल मैं किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभिमन्यु ने काफ़ी सादगी से जवाब दिया। अब तैयार नहीं हो तो क्या हुआ, एक दो साल में तैयार हो जाओगे तब शादी कर लेना। कौन सा कल ही मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ,
केशव ने अभिमन्यु को मनाने की एक और कोशिश की। अभिमन्यु के दिल में उसके माता पिता की शादी को लेकर बहुत कड़वाहट थी, इसलिए वो शादी जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहता था। अभिमन्यु ने उन्हें टालने के लिए कहा, मैंने प्रणाली से शादी करने का वादा किया था, तो क्या तुम उस बीमार लड़की से शादी करोगे जो कभी भी मर सकती है? केशव ने पूछा। मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, अगर कभी शादी करने का सोचा भी तो प्रणाली से ही करूँगा। अभिमन्यु ने बहाना बनाया, यही बेहतर होगा, अगर तुमने उस लड़की के अलावा किसी और से शादी की तो अच्छा नहीं होगा। अभिमन्यु राजवंश, तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो, भले ही मैंने उसे गोद लिया है लेकिन वो मेरी बेटी है, केशव सख्त अंदाज में बोले। अभिमन्यु उनसे इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, आपने मुझे बताया था कि आपको कोई जरूरी बात करनी है, आप गोवा में रहने वाली सिंघानिया फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते थे, मैं आपको बताना भूल गया लेकिन मेरा भतीजा नक्श उस घर की लड़की से शादी करने जा रहा है। ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें वहाँ जाने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। मुझे आदर्श सिंघानिया की पत्नी राधिका सिंघानिया के बारे में अपडेट चाहिए, क्या वो अपनी शादी में वहाँ खुश है या नहीं? केशव ने सीधे सीधे कहा। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन आपको उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? अभिमन्यु ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा, क्योंकि केशव ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते थे, अपनी फैमिली के साथ भी वो ज्यादा नहीं रहते थे, बस कुछ पुराने रिश्ते हैं, इसी वजह से पता लगाना चाहता हूँ, ये बात हम दोनों के बीच की रहनी चाहिए, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु को उनका काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी वो उनकी कोई बात नहीं टालता था, उसे सिंघानिया फैमिली और राजवंश फैमिली के लोगों से रिश्ते निभाने का शौक नहीं था, अगर वो नक्श की सगाई में गया था तो उसका एकमात्र कारण राधिका सिंघानिया थी। डिनर हो जाने के बाद अभिमन्यु उठा और केशव को बाय बोलते हुए कहा, बेफिक्र रहिए, मैं आपको सारी जरूरी अपडेट दे दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तभी मुझे बताना, वरना मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, केशव बोले। अभिमन्यु को तब भी उनका रिश्ता और बातें कुछ अजीब लगी थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं। उन्हें बाय बोलकर अभिमन्यु कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से केशव ने सख्त आवाज में कहा, एक और बात अभिमन्यु, तुमने मेरी बेटी से शादी का रिश्ता ठुकराया है, अगर प्रणाली के अलावा तुमने किसी और से शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
अभिमन्यु ने उनकी तरफ पलटकर वही ना दिखने वाली स्माइल के साथ सिर हिला दिया था। उसे केशव की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभिमन्यु का ये एटीट्यूड देखकर केशव ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे इस एगोइस्टिक बिहेवियर से नफरत है अभिमन्यु राजवंश, अब तो तुम मेरी बेटी से शादी कर भी लो तो मैं खुद उस शादी को तुड़वा दूंगा, चलो निकलो यहाँ से। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु ने जवाब में कहा, ऐसा तो तब होगा ना जब मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा मिस्टर सिंघानिया। यही बेहतर होगा, केशव ने कोल्ड वॉइस में कहा और फिर अभिमन्यु को वहां से जाने का इशारा किया। उस दिन की बात याद आने पर अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। वो बोला, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है, जब भी मिस्टर सिंघानिया से चैलेंज करता हूँ और किसी काम को करने से मना करता हूँ तो वही हो जाता है। पहले मैंने शादी से भी इनकार कर दिया था, तब मेरी शादी इशिका से हो गई थी। उस दिन उन्होंने साफ कहा था कि अगर गलती से भी मैंने उनकी बेटी से शादी की तो वो खुद उस शादी को तुड़वा देंगे। कहीं सच में मिस्टर सिंघानिया अपनी जिद में आकर ये ना कर दे। मुझे मिसेस सिंघानिया से बात करके पूछना ही होगा आखिर सच क्या है। पृथ्वी के एक फोन कॉल ने अभिमन्यु के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बात करने के लिए बाहर ही आया था कि उसके सामने इशिका नजर आई। तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वैसे मैं तुमसे ही बात करने के लिए आई थी, अभिमन्यु को हड़बड़ाता देखकर इशिका ने पूछा। मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। मॉम तो थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए निकल गई और हमें भी जाना होगा, याद है ना, हमें रूही को लेकर आना है और मिस्टर सिंघानिया भी हमसे मिलना चाहते थे, इशिका ने बताया। लेकिन वो अचानक हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? उन्हें तो मिलना जुलना पसंद नहीं है, अभिमन्यु ने जल्दी से पूछा। उसे मन ही मन डर सता रहा था कि कहीं केशव को पता तो नहीं चल गया कि इशिका उसकी बेटी है। हाँ पता नहीं, मैंने कॉल करके पूछा भी था तो उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, बोला था बहुत अर्जेंट है। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेली आ जाऊं क्योंकि उन्हें मुझसे काम है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ लेकर चलती हूँ क्योंकि हमें रूही को भी लेकर आना है। मैं पैकिंग कर लेती हूँ, तुम तैयार हो जाओ, इशिका ने बताया और फिर रूम के अंदर पैकिंग करने के लिए चली गई। इशिका की बातों ने अभिमन्यु के शक को और भी गहरा कर दिया था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ओ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है केशव को सच पता लग गया होगा? अगर पता लग भी गया है तो क्या वो अभिमन्यु और इशिका को एक दूसरे की जिंदगी से अलग कर देंगे?